बैठा हुआ था कहीं, तो अली आया अपनी टेबल छोड़ के मुझे आके सलाम किया और गले लग के, अंकल रिमेम्बर मी, मैं कहा या अली अली, हाँ आरफा बाजी का, मैं वाह यार अली ये तरबियत होती है बाजी, आप इसका बिल कर दीजिएगा, आपने जो तरबियत बच्चे की है ना,
अल्हम्दुलिल्लाह उसको जीता रखे नेक रखे।
मैं कहता हूँ मैं सलूट करता हूँ, आप मुझे देख रहे मेरी आंखों में आंसू है और मैं उसकी जो फीलिंग देख के ना, वो बिलीव करो मैं अभी तक मेरा दिल वो इतना उदास, मुजफ्फर भाई को आपको पता है हर बंदे को प्यार करते थे, लेकिन मुजफ्फर भाई के ऊपर गया है और आपके ऊपर मैं ये कह रहा
हूँ, अल्लाह ना करे मेरे पे जाए, मैं खुदा की कसम मैं तो दुआ करूँ अल्लाह ना करे वो मुजफ्फर जैसा ही रहे तो बहुत अच्छा है।
वो छोड़ के अपनी टेबल छोड़ के उसे क्या परवाह थी, मैं नाम नहीं आगे ना सलाम करता,
नहीं शाह जी बड़ों को सलाम
कीजिएगा, इसका बिल जरूर मैं देने को तैयार,
बड़ों को सलाम करना उसकी, तो वो मैं आपको
पहचानना भी ना खाली सलाम नहीं, इतने लोगों में पहचानना ये अंकल नाशिशा है तो ये आके
एक और मैं आपको बताती हूँ, ये बचपन के दोस्त जीते रहे, अब इनके वक्त आ गए तो ये सारे बचपन के दोस्त हैं, एक्चुअली इसका दोस्त उसकी शादी दानिश उनकी शादी थी जिसपे शाहजी भी आए हुए थे, उसने घर आके मुझे कहा, उसने कहा कि शाहजी वॉज प्रेजेंट देयर एंड आई थिंक इट इज हिज नेटवर्किंग विच इज मेकिंग हिम सक्सेसफुल एंड ही वॉज देयर, शादी पे पहुंचे हुए थे। शाहजी एक लतीफा भी यहाँ सुनते चलते हैं, एक बहुत अच्छा भाई है, इस बच्चे की आदत है ये सबको, इसका एक दोस्त है अहमद मंजूर भाई को आप जानते हैं, जो हमारी गार्डनिंग लॉन, बच्चा एकदम से ज़रा जब बच्चे बड़े होते हैं बच्चों की शक्ल भी बदलती है, बाल भी लंबे थे इसने, वो ड्रेस था कपड़े भी प्रॉपर पहने हुए थे, उस दिन भी इसने मुजफ्फर के कपड़े ही पहने हुए थे।
अच्छा
तो वो मुनव्वर मंजूर भाई को सलाम करने के लिए गया, मंजूर भाई भी सुन रहे होते हैं प्रोग्राम और मुझे पता वो सुन रहे हैं, घर आके कहता मॉम आई वाज एम्बैरस्ड, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, कहता मैं मंजूर अंकल को सलाम करने के लिए गया तो उन्होंने मेरा सलाम बड़े तरीके से अच्छे तरीके से मुझे वालेकुम सलाम कहा और मैंने फौरन तारफ कराया, कहते दिस इज मोहम्मद अली आरफा सर, तो कहते वो कहने लगे हाउ इज योर फादर, कहते अब मैंने उसको कहा मैंने कहा यार माय फादर इज डूइंग फिनोमिनल ही इज वेरी गुड,
क्या बात
घर आके उसने मुझे एक किस्सा सुनाया, मगर फिर वलीमे पे मुलाकात हुई, मंजूर भाई बहुत प्यारे हैं मेरी, बल्कि लॉन की हर चीज को लुक आफ्टर करते हैं, बहुत शुक्रिया शाह जी आपका,
थैंक यू जी, थैंक यू माजी भाई आपका भी,
शाह जी से मैंने बात कराई। बाय द वे जब मैं लॉन का जिक्र कर रही हूँ तो अगर आपके घर में लॉन है तो मैं आपको एक नंबर देती हूँ, मैं आपको मदर नंबर कौन सा देने लगी हूं कि अगर आपका लॉन है, अच्छा ये मैं खुद 5 साल से, मंजूर भाई का भी नाम आया तो वहां से मुझे ख्याल आया, मैं पिछले 5 साल से इनकी सर्विसेज वेरी मोर देन रीजनेबल, जब गर्मियां आती हैं तो देख कम सारे के सारे लीव्स जो इधर उधर फंसे होते हैं उन तमाम को निकाल के लॉन को साफ करके टिल करके चले जाते हैं, फिर वो आते हैं आपका जो बाहर की खाद है वो डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देर इज नो वीड इन माय होम, तो वो खाद डालते हैं, उसके बाद वो लॉन को काटते हैं, जो ग्रास होती है उसको बैग में डाल के साइड पे रख के चले जाते हैं, और फिर एवरी वीक दे कम दे कट द लॉन एंड दे उसको जो ग्रास की कटिंग्स होती हैं उनको सबको ब्लो करते हैं, सारा लॉन साइड साफ करके चले जाते हैं, एवरी वीक आते हैं, ये अप्रैल से शुरू होता है और अक्टूबर तक सिलसिला, यानी एवरी वीक दे कम और इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस एंड ऑनेस्ट टू गॉड आप जो लोग खुद लॉन को काटते हैं गैस लाके वो जो आप टाइम स्पेंड करते हैं दैट इज मच मोर देन दैट, मच मोर देन दैट, इसके अलावा अगर आपने अपने घर में स्टोन वर्क कराना है तो दे हैव अ ग्रेट टीम, इनकी पूरी की पूरी टीम है, मैं आपको एक नंबर देती हूँ आप इस पे कॉल करें, मैनी है इसका नाम, मैनी मैनी बहुत सारे मैनी एम ए एन वाई मैनी उसका नाम है, मैनी मैनी को आप कॉल कीजिएगा एम ए एन ई ई, ग्रास कटिंग के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए, स्टोन वर्क के लिए, इतनी अच्छी टीम है, फिर देख हम समर में जितनी दफा वो आते हैं आके 2 दफा खाद डाल के जाते हैं ताकि वीड ना हो, उनकी लास्ट विजिट अक्टूबर के महीने में होती है, अक्टूबर द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और अक्टूबर में जब वो आते हैं तो वो फिर एक दफा लॉन को काट के उसको उस पर स्प्रे करते हैं, उस पर खाद डालते हैं जो कि सर्दियों में फिर लॉन के साथ रहती है, कल मैं पिक्चर्स उतार के लेके आऊंगी, आई कैन इवन शो यू कि कितनी खूबसूरत ग्रास ہیلتھی گراس کے لیے. اور اس کے بعد جو پرانے پودے ہوتے ہیں ان کو نکال کے اپنے تھیلوں میں بند کر کے سائڈ پہ کر کے چلے جاتے ہیں. اٹس اے گریٹ ٹیم. آپ اگر اور سب سے بڑی بات یہ ہے آف کورس اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم آف دی لائف جس میں ہم وی وانٹ ٹو سیو ایوری پینی. اٹس ویری ریزنیبل, اٹ از مور دین ریزنیبل. آپ مینی کا نمبر لیجئے, ان کا نمبر 705-500-9000. اور مارکم میں اگر آپ ہیں تو آئی کین گیٹ یو اے اسپیشل فار دیم گراس کٹنگ کے لیے. اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ دیئر پرائس از ویری ریزنیبل, نمبر ون. نمبر ٹو, اٹس این اپرچونٹی فار دی یگ پیپل ایز ویل. وی ہیو ٹو انگیج دیز یگ پیپل ان سرٹن تھنگس. تو ظاہر ہے جب گروپ کال ہوتی ہے, یہ ایک مارکم میں اگر آپ ہیں تو وی کین ایون گیٹ یو مور اسپیشل. آپ کال کیجیے مینی کو گراس کٹنگ کے لیے, لان مینٹیننس کے لیے, لینڈسکیپنگ کے لیے. گراس کٹنگ تو میرا اپنا 5 سال سے بین لوکنگ, میرے نیبر نے بھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ لیا ہے. 705-500-9000. اینڈ آئی گارنٹی کہ اٹ از ورتھ ٹیکنگ دیئر سروس. آئیے میں آپ کو ایک جگہ لے کے جاتی ہوں. اگین جیسے میں کہتی ہوں کہ میرا ٹائم ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم کاؤنسلیٹ میں, ہمیں کام ہوتا ہے نا پاکستان کاؤنسلیٹ میں, تو پاکستان کاؤنسلیٹ میں جاتے ہیں, ایک دن کاغذ چھڈن جاؤ, ایک دن کاغذ لین جاؤ. میں جس شخص سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں, یہ ہے ہماری ٹریول ایجنسی ہے, اور الحبیب ٹریولز بہت ہی یعنی مارکم مسجد کے بالکل سامنے ڈینیسن روڈ پہ آپ کو ملتا ہے الحبیب ٹریولز. آپ نے پاکستان پیسے بھیجنے ہیں, ون سٹاپ منی ٹرانسفر کی سہولت ہے. آپ نے پاکستان کے لیے نائیکاپ بنوانا ہے, آپ نے کوئی اٹیسٹیشن کروانی ہے, پاسپورٹ کا رینیول ہے وہ آپ کو کروانا ہے, آپ نے ویزا لگوانا ہے, یعنی اٹیسٹیشن, ڈاکیومینٹس کی اٹیسٹیشن. تو رادر دین اسپینڈنگ یور گیس اینڈ رادر دین اسپینڈنگ یور ٹائم ٹو گو آل دا وے اسٹینڈنگ ان دا لائن, بیٹر ٹو کانٹیکٹ الحبیب ٹریول. ساتوں دن کھلتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے, 7 days a week. 2860 Denison Street in Markham. الحبیب ٹریولس, یعنی وہاں پہ پاسپورٹ کی پکچرز بھی اترا سکتے ہیں, نائیکاپ سے متعلق, اٹیسٹیشن سے متعلق, پاسپورٹ, ویزا, کوئی بھی کسی قسم کا کام ہے, منی ٹرانسفر ہے, آپ فیڈ ایکس کے ذریعے 50% آپ کو آف ملتا ہے. اب یہ کیسے, یہ پھنسی ہوئی یہاں تھی کہ ڈی ایچ ایل فیڈ ایکس پہ 50% آف ملتا ہے, واٹ ڈز اٹ مین. شہزاد صاحب میرے ساتھ ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی ابھی ریسنٹلی عمرہ کرنے گئی تو آئی جسٹ ٹک دیئر سروسز. گریٹ پیپل. آپ یقین کیجئے گا جب تک ہم وہاں لینڈ نہیں کر گئے, ہم نے اپنی ایپ پہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا, لمحہ دیور وتھ می, ایوری اسٹیپ اینڈ ایوری پوائنٹ دیور وتھ می. ناؤ دے آر ٹیکنگ حج کا اور ایزی سستا والا ٹرپ آپ کو کروا رہے ہیں. جناب شہزاد صاحب میرے ساتھ. سر السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام وبرکاتہ, کیسے ہیں؟ بہت خیریت سے ہیں.
بہت شکریہ شہزاد بھائی. یہ آپ کا آفس الحبیب ٹریول, الحبیب گروسرز, ساتوں دن کھلتے ہیں, مارکم مسجد کے برابر میں ہیں. سے سمبڈی وانٹس ٹو ٹیک یور سروس, رادر دین گوئنگ ٹو دا کاؤنسلیٹ, اٹیسٹیشن نہیں, یہ کاغذ نہیں, وہ کاغذ نہیں, اور پھر چکر آن لے چھوڑنے جاؤ, لینے جاؤ ٹائم کا, تو ہاؤ ڈو یو گیو یور سروسز اینڈ وٹ از دس ڈی ایچ ایل فیڈ ایکس اپ ٹو 50% آف؟
جی بھاجی, تو ہماری جو سروسز میں, جو پاکستان کونسلیٹ کی خاص طور پہ جو لوگ پاکستان کا ویزا لینا چاہیں یا پاکستانی پاسپورٹ بنانا چاہیں, اور خاص طور پہ جو نائیکاپ بنانا چاہتے ہیں, جو کونسلیٹ بھی سروسز دیتا ہے نائیکاپ کی, وہ آن لائن سروس دے رہا ہے. ہم لوگ بھی اس کی آن لائن سروس دیتے ہیں. ہم 7 کے 7 دن اوپن ہیں, 10:30 AM ٹو 7 PM, اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ ان کی نائیکاپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو, وہ اکارڈنگ ٹو دا رول جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ ہم بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ, تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ ان کے نائیکاپ جو ہے وہ ان کے گھر تک پہنچایا جائے. और इस तरह पाकिस्तान वीजा की एप्लीकेशन भी, ये भी ऑनलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हम सर्विस दे रहे होते हैं। और खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से कोई भी टिकट्स, खासतौर पे जैसे आजकल पीआईए की 15% सेल लगी हुई है, तो 3 दिन अभी इसमें बाकी हैं, 10 मई तक जो है ये लास्ट डे है इसका, आप ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम 10th of May टू 5th of August, तो सॉरी इट्स 23rd of April टू 5th of August। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी ने पाकिस्तान जाना है तो 3 दिन बाकी हैं, इसमें 15% डिस्काउंट के साथ आप पीआई के टिकट्स ले सकते हैं हमसे। और दूसरे, अगर आपको DHL आपको पाकिस्तान भेजना है, ये सिर्फ कोरियर सर्विस है, एनवेलप अगर आपने आपको पाकिस्तान भेजना हो, अगर आप बाहर से DHL के थ्रू आप भिजवाते हैं तो वो आपको 130-140 डॉलर। हम लोग उसका 50% तक का जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं।
आप नॉर्थ अमेरिका में भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं?
कहीं पे भी भिजवाएं आप तो इंशाल्लाह, तो आपको DHL में आपको और FedEx में आपको 50% डिस्काउंट।
अजीत भाई, इट्स अ ग्रेट थिंग,
इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग।
आप इसका मतलब है कि अगर आपने नॉर्थ अमेरिका में डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं तो आप नॉर्थ अमेरिका में भी डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। आप अल हबीब ट्रेवल से रब्ता कीजिए 9055547786। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इनकी सर्विसेज जरूर दीजिएगा। ये स्पॉन्सर ही हैं जो हमें इस काबिल करते हैं कि ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश करें। अगला सेगमेंट मैंने जो पेश करना है मीर सादिक से मुतल्लिक, कि हमारे ही अंदर बाज़ लोग अपने जाती मफादात के लिए किस तरह से सल्तनतों को गिरा दिया करते होते हैं। मैं एहसान मंद हूँ अल हबीब ट्रेवल्स की, मैं एहसान मंद हूँ जनाब शहजाद साहब की, और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एहसान मंद हूँ जनाब मसूद खान साहब की, जिनके तवस्सुत से ये कमर्शियल हमारे तक आया। वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइन, आई थिंक ही इज फ्रॉम मार्कम, इज दैट राइट?
जी बाबा जी, मार्कम,
मार्कम में।
इस गाय भी वेरी नाइस गाय।
माजिद भाई ना हर चीज का क्रेडिट लेते हैं।
अगर मार्कम में सर आए हैं तो
आपके मार्कम में से आपके घर से 2 गाड़ियां चोरी हुई सारे के सारे, तो वहां पे
ब्रैम्पटन से आए थे वो।
व्हाट अ मैन, व्हाट अ,
वो यहाँ के लोकल नहीं।
अब आप जरा माजिद जमाल साहब की बात सुने। माजिद भाई आप गोरे हैं?
ऑफकोर्स यस।
अब यहाँ से आप देख लें, अगर ये गोरे हैं तो ये सच कह रहे हैं।
माजिद भाई तो हमारे नेबर भी हैं, तो इसलिए माजिद भाई की हर बात को मानना पड़ता है।
इसे कहते हैं रब नेड़े के कसम।
हम जो है साहब, हम लोग मार्कम वाले एक साथ जमे हुए लोग हैं,
डिक्टेटर
अल्हम्दुलिल्लाह,
है ना जी।
अच्छा शहजाद भाई, मुझे एक बात बताएं। देखिए हर इंसान के दो पहलू होते हैं, हम जिंदगी में सीरियस भी होते हैं। खैर मेरा तो, मैं तो पहले तो मुजफ्फर अली हमेशा क्या करते थे, आरफा बचपन में गिरी थी, सर पे चोट लगी थी, आज तक असर है और रहेगा, अल्लाह करे मैं इसी टुन जिंदगी में ही गुजर जाऊं। आपने कभी गाना गाया? ये
क्यों
गलत सवाल कर दिया,
फंसा रही हैं आप उनको।
ये नेक आदमी है, ये इशराक पढ़ के वहां से निकलते हैं, मगर नेकी का ये मतलब नहीं कि गाना ना गाया। देखिए जी, गाने जिंदगी में इतने खूबसूरत हैं हर इंसान, मगर कभी तो आपने कोई गाना गाया होगा?
देखिए जी, बचपन में तो गाए ही होंगे, लेकिन अभी फिलहाल का कोई ऐसा ना इरादा है ना।
कैसे हो सकता है, आप अपने बच्चे को देखिए, आपको गाना लोरी ना याद आए, गाना ना याद आए। आप अपनी बेगम को देखिए और आपकी बेगमें हैं भी बड़ी माशाल्लाह प्यारी, आपको गाना ना याद आए।
जी वही तो कह रहा हूँ ना, इसमें झूठ भी तो नहीं बोला जा सकता कि नहीं गाया होगा बचपन में, तो डेफिनेटली गाया होगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया होगा काफी।
एक और कमर्शियल गया। नेक्स्ट टाइम मैं उनको कॉल करूंगा तो वो मेरे कॉल का जवाब ही नहीं देंगे।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। के अलावा भी जब भी आपने कॉल किया वाजिद भाई, आप हमेशा, आपको कॉल
करें हमेशा हमेशा हमेशा।
बहुत शुक्रिया। मैं अच्छा घरों की बात ना करूं,
गानों की बात
क्यों भाई?
एक एक वही स्टेज आता है जिंदगी में कि जब
गाना छोड़ देते हैं
गाने वाले,
आप तो अभी भी गाने गाते हैं।
वो एक एक दफा मैं जब गाने सुना करता था, हाँ? तो कोई तबलीग वाले एक हमारे दोस्त वो आके बैठ गए गाड़ी में, तो मैंने वो गाना चला दिया। अच्छा। तो काफी देर तक तो सुनते रहे थे, थोड़ी देर बाद वो बोले कि जमाने जालियत में हम भी ये सुना करते थे।
मगर मैं ये कहती हूँ, ये कायनात देखिए, कभी मैं आपको, आप قرآن کی حدیث کی بات کرے, اللہ کرے کہ میرا خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان ہو, میرے دم دم سے یہ دعا ہے. مگر میں کبھی اپنے دل کی دھڑکن سنتی ہوں تو آپ یقین کریں اٹس اے میوزک, میرے جسم میں خون کی, یعنی یہ کائنات از سو آرگنائز. میوزک کیا ہے؟ ایک آرگنائز, یس, ایک ہوتی ہے بری چیز. بری چیز نہ دیکھیں نہ سنیں, قرآن میں بھی منع ہے اور آف کورس اٹ از ڈیفینیٹلی منع ہے. مگر ہماری ہوا کا میوزک ہے, پانی کا بہاؤ میوزک ہے, آپ غاروں میں سے گزرتی ہوئی ہوا کو دیکھیں. تو بہرحال آپ اپنی تبلیغ کریں, میں اپنی تبلیغ کروں.
اللہ آسانی کرے, جو ہمارے دل میں ہو, جو ہماری آخرت اسی میں ہی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آپ اگر اپنا ٹائم ذکر میں گزاریں گے تو وہ تو جب آپ کی آخری ٹائم ہوگا تو اس وقت پھر آپ کے ذکر ہی نکل رہا ہوگا آپ کی زبان,
انشاءاللہ. ہاں بالکل صحیح. اور اللہ, ایک بات میں یہاں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنا چاہیے, کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندش ہو جائے تو انسان بعض چیزوں سے ایسے رکتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں رکا کیوں ہوں. اللہ کرے کہ ہمیں سیدھے رستے کی توفیق ہو ہمیشہ. ہم بات کریں الحبیب ٹریول, ساتوں دن کھلنے والے مارکھم مسجد کے سامنے. الحبیب ٹریولز کی ہم بات کر رہے ہیں, الحبیب پروسیس کی بات کر رہے ہیں مارکھم مسجد کے سامنے, اور شہزاد صاحب میرے ساتھ ہیں. سر آپ ایک دفعہ سے بتا دیجیے گا, 10 مئی تک پی آئی اے کی ٹکٹس پہ 15% ڈسکاؤنٹ, یعنی $1630 میں یہ ٹکٹ سٹارٹ ہوتی ہے 13 گھنٹے میں پاکستان.
جی, تو ہمارا فون نمبر ہے 905-554-7786, 905-554-7786. آپ کال کریں, انشاءاللہ ہم 10:30 to 7:30 تک ہیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے.
5547786. میرا لاسٹ کوشچن آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے علاوہ دیر آر ادر ایئر لائنز, ٹرکش ایئر لائنز ہے, سعودیہ. آر یو میڈ می ٹو ٹریول تھرو سعودیہ, اٹ واز اے گریٹ جرنی, اٹ واز اے گریٹ 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 جرنی. دیر از اتحاد ایئر لائنز, سو یو ڈیل ود آل ایئر لائنز, از دیٹ
رائٹ؟ وی ڈیل ود آل ایئر لائنز, اور ہم لوگ عمرہ کے پیکیجز بھی کرتے ہیں. تو ایون کے 4 ہمارے نیکسٹ گروپ جا رہے ہیں, جولائی میں جا رہے ہیں, اگست میں جا رہے ہیں, اکتوبر میں جا رہے ہیں, دسمبر میں جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر عمرہ گروپ میں بھی جانا ہو تو انشاءاللہ آپ آئیں اور ہماری فیڈ بیک دیکھیں, آپ ہماری آن لائن ریویوز پڑھیں انشاءاللہ. تو جو بھی ہمارے ساتھ جائے گا, ایک تو ساز و آواز کے حوالے سے ہم ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے, اسپیشلی ویزا کا ڈسکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ چلیں, آپ لوگوں کو اچھا لگے گا.
چلیے صاحب چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ ہم چلتے ہیں مکہ معظمہ. بھی ابھی آج ہمارا ایک گروپ ممبر گیا ہے, میں نے تو بس اسے یہی دعا کی تھی پلیز میرے لیے کہہ دینا کہ اللہ میاں اس کو بلا لیں پلیز, وہ آنا چاہتے ہیں
انشاءاللہ.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مائی ریسپیکٹڈ بردر جناب شہزاد صاحب, تھینک یو سر, تھینک یو. میں اگلے طرف لے کے جانے سے پہلے آپ کو ٹیپو سلطان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. ٹیپو سلطان کی جب ہم بات کرتے ہیں, ویری سمپل, ان کے بارے میں جتنی تاریخ کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں اس میں انہیں زرق برق لباس پہننے کا شوق نہیں تھا, ان کو بادشاہ جیسے ڈولیوں میں ٹریول کرتے ہیں, ان کو ڈولی میں ٹریول کرنے کا شوق نہیں تھا. مگر مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ
مینس کے اوپر چلے جائیں, ٹاپ ٹاپ,
پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے, ٹاپ آف دا آور.
او یو گاٹ اٹ, اوکے, سو لیٹس گو ٹو دا ٹاپ آف دی آور اینڈ ویل بی رائٹ,
سٹے ٹیونڈ, ویل ٹاک اباؤٹ ٹیپو سلطان.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یانگس ٹاؤن ٹورانٹو.
یوں ہی چلا چل رہی, یوں ہی چلا چل رہی پلاننگ فار ویکیشن.
ہوائی ٹکٹ کی قیمتیں تو آسمان کو چھو رہی ہیں.
ارے میرے لیے کوئی ڈیل تو دیکھو.
اور مشین کے بجائے ریپرزینٹیٹو سے بات کریں.
ہے نا ایئر ونگ ٹریول, ہول سیل ریٹ, پاکستان, انڈیا اور مڈل ایسٹ, ایوری ویئر ویئر یو وانٹ ٹو ٹریول.
ایکسلنٹ ایکسلنٹ
پرسنلائزڈ ٹریول سولوشنز, افورڈیبل, ایزی اینڈ ڈسکاؤنٹڈ ایئر فیئرز.
Air Wing Travel and Tours, 905-272-2300, 905-272-2300, airwings.ca.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, आप पायल ज्वेलर्स पे जाओ ना।
मगर मुझे चाहिए 22 कैरेट की कस्टम ब्राइडल ज्वेलरी, हीरे की अंगूठी, चूड़ियाँ, बालियाँ, कड़े, वो भी लेटेस्ट डिजाइन के और इम्पोर्टेड मटेरियल में।
हाँ हाँ, पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
पायल ज्वेलर्स की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है 11 मई को एट 11 AM 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन, या कॉल करें 905-790-7879।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल,
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन।
सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल, आज ही कॉल कीजिए 4372188734, chandnihalls.ca।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com, لوکل نمبر
6478724900।
اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا सोडी फर्नीचर हर घर की पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर का फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जाता सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स।
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम।
ध्यान रहे, सेल तो सिर्फ अप्रैल 20th से मई 12th तक ही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। विजिट lizascosmetics.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर, 6472903773, ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रैकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है, रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीआं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसीं तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी, डिक्सी और दंदास की पहली लोकेशन के बाद अब सेकंड लोकेशन
एट 2560 शेपर्ड एवेन्यू, मिसिसॉगा।
सस्ती और अच्छी ग्रोसरी के लिए अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी,
कॉल 9058482747 या 6479989893।
ओपन 7 days a week, 10 AM to 9 PM, अलीमान हलाल मीट एंड ग्रोसरी।
सब बात होने जा रही थी फाइबर के वीक होने की, इसको माइंड करने की कोई बात नहीं, ये तारीख का हिस्सा है, ये बिल्कुल तारीख का हिस्सा है। पुर्तगाली हमारे सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए, फिर पुर्तगालियों को मार दी, ब्रिटिशर्स ने आके मार दी, और किस तरह से जो हिंदुस्तान था उस वक्त का सब कॉन्टिनेंट, इसके तमाम के तमाम जो जखायर थे वो यहां से लेकर चले गए। इंडिया तो आज भी फाइट कर रहा है, इंडिया तो शायद अपना कोहिनूर भी कर्जे के साथ क्या सूद के साथ वापस ले ले, या बाकी अपने नवादरात को सूद के साथ वापस ले ले, मगर पाकिस्तान कहां खड़ा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जाहिर है मुसलमान थे, और अगर टीपू सुल्तान की बात की जाए तो टीपू सुल्तान ने जैसे हुकूमत किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आती है तो इन्होंने अपने ही मैसूर इलाकों में अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी थी। फौज में बेशुमार मुसलमान भी भर्ती हुए, इलाके के लोग भी भर्ती हुए, उनको खास वजायफ दिए जाते थे, खास उनको अलकाबाद से नवाजा जाता था। तो टीपू सुल्तान आज तक भी मीर जाफर का नाम मैंने और आपने सुना। टीपू सुल्तान जो जाहिर है अपने बाप की तरह से नहीं थे, इनको ताज और वो चीजें पहनना और जरक बरक भारी कपड़े पहनने से की तरफ रगबत नहीं थी, ना ये डोलियों में ट्रेवल करना चाहते थे। उनको तलवार की बड़ी महारत थी और घुड़सवारी में बड़े माहिर थे। आम जिंदगी में भी वो ज्यादा वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी का टीपू सुल्तान ने घोड़े के ऊपर ही गुजारा। ये तारीख को मुरतब करने वाले भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वेस्ट से ही उनका ताल्लुक है। ये तारीखदान कर्नल मार्क विल्सन लिखते हैं कि टीपू सुल्तान कद में अपने बाप से छोटे थे, रंग इनका काला था, आंखें इनकी बड़ी थी। आमिर कितना अच्छा होगा कि अगर आप टीपू सुल्तान की पिक्चर यहां पे लगा दें तो। वो आम से दिखते थे और वजन में हल्के कपड़े पहनते थे, यानी बहुत जरक बरक कपड़े पहन के, और जैसे बादशाहों के बारे में मैंने और आपने देखा वो उससे इज्तनाब बरतते थे। वो डोली में बैठ के सफर करना भी पसंद नहीं करते थे। ज्यादातर जिंदगी का वक्त जब उनको देखा गया घुड़सवारी में देखा गया, तलवार की मशक उनकी बड़ी कमाल की थी, और वो घुड़सवारी को अपने सर का माथे का सेहरा माना करते होते थे, असल फन माना करते होते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि बादशाहों की माने इन डोलियों में और लोगों के कंधों पर सवार करने से नफरत थी टीपू सुल्तान को। अगर अब आप इनके लिबास की तरफ देखते हैं तो आम जिंदगी में टीपू सुल्तान जो लिबास ज़ेब-तन किया करते होते थे उसमें इनके गले में एक मोतियों की माला हुआ करती होती थी जो कि डेफिनेटली पर्ल्स थे। इनकी टोपी हरे रंग की होती थी और इनकी टोपी में वही पर्ल्स की एक माला ही जुड़ी हुई हुआ करती थी। ये इनकी टीपू सुल्तान को क्योंकि मात दी थी ब्रिटिशर्स ने और नाकाबले तस्खीर थे ये, मगर जब उनको मात भी दी गई थी तो वो कहते हैं ना कि उनके अपने थे जिन्होंने उनकी कमर में छुरा घोंपा था। सारे के सारे उनके अपने थे और सारे नाम मुसलमानों के इसमें आते हैं। ये किताब है इन अकाउंट ऑफ टीपू सुल्तान कोर्ट में इसकी तफसील है। इसमें उनकी वफात के बाद एक अंग्रेजदान मुंशी मोहम्मद थे उनका नाम, और उन्होंने इस अंग्रेज तारीखदान को टीपू सुल्तान के बारे में जो तफसील दी थी कि टीपू सुल्तान दरमियाने कद के थे, माथा इनका चौड़ा था, सलेटी रंग की इनकी आंखें थी, नाक इनकी ऊंची थी, बहुत पतली कमर के मालिक थे और मूंछे छोटी छोटी थी, और जो इनकी जो खास स्टाइल से इन्होंने मूंछे काटी हुई थी, ग्रीन पहनना पसंद किया करते होते थे, तो बिल्कुल क्लीन शेप थे। अब अगर आप लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में देखें तो बाकायदा एक पेंटिंग भी है जिसमें वो हरी पगड़ी पहने हुए नजर भी आते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इनके जो इनकी टोपी थी उसमें भी एक मोतियों की यानी रूबी पर्ल्स की एक माला जड़ी होती थी। जैसे होता है ना सोना पहनना, नो उसका पहनना और सोने के ताज वगैरह पहनने का शौकीन नहीं थे। इसके अलावा हरे रंग का ये लिबास पहनते थे ज्यादातर, और इनके जो लिबास था ना उसमें शेर की धारियों की मानिंद एक डिजाइन बना हुआ था। बाजू में एक बेल्ट में लाल म्यान के अंदर एक तलवार लटक रही होती थी। اچھا اب ان کی قمیض کے نیچے ان کی بازو کے اندر بھی ایک چیز ہوتی تھی جس کا تذکرہ ہماری کہانی کے آخر میں بعد میں آئے گا. سرنگا پٹم کا نام آپ نے سنا. متحدہ ہندوستان میں 14 فروری 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں, اب یہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اندر ہی اندر اپنی فوجوں کو تیار کر لیا تھا. 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا. 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک اور دستہ ان کے ساتھ آ ملا, اور یہ سارے کے سارے وہی ہندوستان تھے جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. 21,000 ان کے اپنے تھے, 16,000 مزید ان کے ساتھ آ کے ملے. اس میں کمر کے قریب جنرل سٹرٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا ایک اور دستہ بھی آ کے شامل ہو جاتا ہے. اور صاحب یہ سارے کے سارے چلتے ہیں اور سرنگا پٹم میں ٹیپو سلطان کا جو قلعہ تھا اس کی یہ محاصرہ کر لیتے ہیں. ایک بہت مشہور تاریخ دان ہے, ان کے قریب جنرل سٹرٹ کی کمان میں 6,002 دوست تھے. یہ جیمز مل تاریخ دان ہے, انہوں نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا, ٹھیک کیسے انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, یقیناً ان کو باؤنٹیز دی گئی تھی, ان کو القابات دیے گئے تھے, ان کو زمینیں دی گئی تھی, اس لالچ میں انہوں نے اپنوں کے سینے میں چھرا گھونپ دیا. اچھا اگر اس میں آپ کسی اور ذات یا برادری یا کسی اور, کیونکہ متحدہ ہندوستان میں ہر طرح کے لوگ آباد تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, مگر مسلمانوں کی تعداد ہراول دستے کے طور پہ یہاں کنسیڈر کی جاتی ہے. یہ جو جیمز مل ہے انہوں نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف برٹش انڈیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے, یہ 1799 سے پہلے ان کی تقریباً بے شمار حصہ جو تھا اس کو آلریڈی, یعنی 6 برس پہلے سرنگا پٹم پہ حملہ کرنے سے 6 سال پہلے ان کی آدھی سے زیادہ سلطنت پر انگریز آلریڈی قبضہ کر چکے تھے. ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی. اب یہ جو یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے ان کو 1 کروڑ سے زیادہ سالانہ ٹیپو سلطان کو اس زمانے میں 1799 میں آمدن کا تخمینہ تھا. اسی دوران اگر آپ برطانوی جو ہندوستان میں تجارت کی غرض سے گئے تھے اگر ان کی آبادی کا ملے تو جو انگریز اس وقت انڈیا میں تھے ان کو ملنے والا کل زر مبادلہ, کیونکہ یہ ٹیپو سلطان کی آدھی سے زیادہ جائیداد پہ آلریڈی قبضہ کر چکے تھے, تقریباً 90 لاکھ پاؤنڈ کے قریب تھا, یعنی ان سے تھوڑا سا 10 لاکھ کم تھا, ٹھیک ہے نہیں زیادہ ہی تھا. ان کو ملتی تھی 1 کروڑ روپیہ, جو برطانوی تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ تھے ان کو جو زر مبادلہ ملتا تھا وہ 90 لاکھ برطانوی پاؤنڈز کے برابر ملا کرتا تھا. اب انگریز یہ جیسے آپ سے میں نے کہا 21,001 تھے, تقریباً 16,001 تھے, 6,000 something اور آئے, انہوں نے آ کے جو سرنگا پٹم تھا اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا, چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا. اندر ٹیپو سلطان تھے. 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کیا گیا اور قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط دیواریں ہوا کرتی تھی ان کو توڑنے کے لیے. اس سے پہلے زمانے میں منجنیکوں کا استعمال کیا جاتا تھا, دیٹ واز ٹائم آف آٹومنز کے زمانے شروع کی بات ہم کرتے ہیں, مگر ٹیپو سلطان کے زمانے تک پھر توپیں آ گئی تھیں. اب جب اتنی انگریزوں کی فوج نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تو انہوں نے توپوں کے ذریعے ان کے اوپر قلعے کی جو مین دیوار تھی اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. اب کچھ بھی نہ کر سکے مگر دیوار میں جو توپوں کا وار کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا. یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں تھا, اگر ٹیپو سلطان کی کمر میں ان کے اپنے ارد گرد کے لوگ چھرا نہ گھونپتے تو شاید آج کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی, مگر ٹیپو سلطان کے کمر میں چھرا گھونپنے والے ان کے اپنے تھے, اور مزے کی بات ہے فوج سے لوگ تھے جو ان کی فوج میں ملازم تھے, جو ان کے پے رول پہ تھے, وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی. اس کہانی کو سنانے کا آپ کا میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ادارے سلطنتوں کی قیام تحفظ کے لیے ہوتے ہیں, مگر انہی اداروں میں تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کس طرح उन्हीं इदारों के लोगों ने सस्ते दामों अपने ईमान को बेचा और सल्तनतों की तबाही का बायस बने। पीछे अगर आप चले जाएं, ऑटोमन्स की बात है, इस वक्त हम 1799 में खड़े हुए हैं, तो हम टीपू सुल्तान की बात करें। टीपू सुल्तान आपको बताइए कि कितना कमाल का लीडर था। अंग्रेज ही एक तारीखदान है और लेशिंगटन उन्होंने अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं कि ये जो ब्रिटिश आर्मी वहां पे मौजूद थी जब उन्होंने सरंगापट्टम के किले का मुहासरा किया और तोपों से बुझाड़ की, तो किले की जो फ्रंट वॉल थी उसकी दीवार में एक सुराख कर दिया। गो कि ये सुराख इतना बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सुराख था, मगर अंग्रेज उस वक्त का जो था उस जॉर्ज हैरिस, उसने अपने फौजियों को इसके जरिए किले के अंदर भेजने का फैसला किया और इसके अलावा किले में जाने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अब मजे की बात देखिएगा, क्योंकि इन्होंने महासरा किया हुआ था, ये बाहर थे, टीपू सुल्तान की फौजें और टीपू सुल्तान किले के अंदर थे, मगर बाहर होने के बावजूद इनके पास खुराक की तरसील कम हो गई थी। इनके पास जो ब्रिटिश आर्मी थी जो बाहर, आप समझिए 21,001, 16,001, 6,000 प्लस एक जो थे इतनी तादाद में, तो इनके पास जो तादाद, जो खुराक की तादाद कम थी, जिसकी वजह से सिपाहियों में जो अंग्रेज फौज में, ब्रिटिश फौज में उस वक्त थे, उनमें उनकी कुव्वत जो थी वो निस्बतन उतनी नहीं रही थी। एक तारीखदान है और ये तारीखदान मीर हुसैन अली खान किरमानी, उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क विल्कसन के हवाले से लिखा है कि टीपू के एक कमांडर, अब आप नोट करने की जो बात है और इसको आज के तनाजर में इन द लॉन्ग रन देखिएगा, कहते हैं कि टीपू के एक कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया। अब रिवोल्ट होता कैसे है, अंदर ही अंदर आप अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कैसे है? तो इनका एक कमांडर था नदीम, उन्होंने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया और फिर उसने उन्हें अपने हम ख्याल जो उनके इर्द गिर्द फौजी थे, सिपाही थे उस दस्ते में, उनको भी अपने साथ शामिल कर दिया। अच्छा, अब नदीम जो कमांडर थे और उनके साथ जो सिपाही थे, ये बिल्कुल जो किला था उस इलाके में थे जहां फ्रंट से तोपों से हमला करके जो टीपू सुल्तान के साथी थे उन्होंने सुराख कर दिया था। ये सारे के सारे उसी जगह पर तैनात थे। अब एंड टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि वो वेजेस का, पैसों का मसला खड़ा कर दिया। इन्होंने सफेद रंग के रुमाल निकाल के बाहर की फौज को इशारा किया कि हम अब यहां से खिसकने लगे हैं, तो तुम लोग सुराख के जरिए अंदर आ जाओ। किरमानी लिखते हैं कि जैसे ही उन्होंने ना इनको सफेद रुमाल हिला दिए। टीपू सुल्तान के ना एक और कमांडर थे, उनका नाम गफ्फार था। गफ्फार कहते हैं उनकी मौत हो गई और किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेज की जानिब सफेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिए। अब जाहिर है टीपू सुल्तान अंदर थे, उनको पता था कि बाहर अंग्रेजों की फौजें खड़ी हैं और वो किले की दीवारों के ऊपर गोलाबारी भी कर रही हैं, तो इसी में तीरों की लड़ाई और जिसमें किरमानी की डेथ हो जाती है। ये जो नदीम और इसके साथ जितने लोग शामिल थे, इन्होंने पहला छुरा उनकी कमर में घोंपा और इन्होंने सफेद रुमाल दिखा के उनको इंडिकेशन दी कि अब आप भरपूर हमला कर दीजिएगा। पहले से ये तय था कि जब ऐसा किया जाएगा, यानी जब ये सफेद झंडे दिखा जाएंगे, तो अंग्रेज फौज किले पर हल्ला बोल देगी। जैसे ही सफेद रुमाल दिखाने का नदीम और उसकी टीम की तरफ से सिग्नल मिला, तो जनाब फौज ने दरिया के किनारे बढ़ना शुरू कर दिया और दरिया सिर्फ 100 गज के फासले पे ये लोग बाकी रह गए थे। दरिया भी सिर्फ 280 गज चौड़ा था, कहीं पे उसका पानी घुटनों के बल था, कहीं उसका पानी कमर के बल था। मेजर अलेक्जेंडर एलन, ये तमाम के तमाम उस वक्त के जो इनके लीडर्स थे, यानी आर्मी के, ब्रिटिश आर्मी के जो लोग अपॉइंटेड थे वहां पे, उन सब ने अपनी बात में किताबें लिखी और उनकी किताब में, मेजर अलेक्जेंडर एलन उनकी किताब इन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर, इन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर, उसमें मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं कि हालांकि अंग्रेजों की आगे बढ़ती हुई फौज से बड़ी आसानी से तोपों का हदफ, अब आप सोचिए किले की दीवारों के ऊपर फौजी तैनात थे, उनके ऊपर हमला हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये वो हरावल दस्ता था जो फ्रंट पे उस जगह अपॉइंटेड था, जिसको देखभाल कर रहे थे वो नदीम जो कमांडर थे और उनके वो साथी जो अंदर खाते बाहर वाली फौज से, यानी ब्रिटिश की फौज के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने सफेद झंडे दिखाए थे। जब पता चलता है कि हमला हो गया और ये जो अंग्रेज फौजी हैं वो जो फ्रंट के ऊपर एक दीवार थी उसमें से किले के अंदर दाखिल हो गए और अंग्रेज ने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक वो हिस्सा जो दाई तरफ चला और एक हिस्सा जो बाई तरफ पता चला। जब टीपू सुल्तान को पता चला कि अब अंग्रेज अंदर आ गए हैं, किले के अंदर दाखिल हो गए उस शिगाफ के जरिए, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने घोड़े पे चढ़ के ठीक ठाक सिर तोड़ लड़ाई की और बड़ी जानसारी से लड़े। वो जो टोला उस सिमत में गया था जिस सिमत में टीपू सुल्तान थे, उस तमाम के तमाम टोले का कला कमा उन्होंने किया। ठीक, सख्त मुश्किलात का सामना अंग्रेजों को उस साइड पे करना पड़ा जिस साइड पे टीपू सुल्तान संभाले हुए थे। दस प्रतस मुकाबला भी हुआ मगर अल्टीमेटली टीपू सुल्तान उन फौजियों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। टीपू सुल्तान की फौज की हिम्मत बंधाने में खुद शामिल हुए थे। एक और लेफ्टिनेंट फर्क्यूहार ने कहते हैं, लेकिन वो भी जल्द मतलब उनको भी बहुत सारे अंग्रेज फौजी मारे गए, उनके लेफ्टिनेंट बड़े अफसर मारे गए। 4 मई की सुबह, ये 4 मई 1799 के दिन की हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि टीपू सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार में होने वाले जो सुराख था जहां से ये फौजी दाखिल हुए थे, इन्होंने सुराख का मुआयना किया और उसकी रिपेयर करने का कहा गया। ठीक, अब ये सुबह का मामला है, होते होते शाम हुई, शाम होते तक, क्योंकि उनको पता था कि जगह भी अभी गीली है, इस जगह को दोबारा तोड़ना बहुत आसान है, उन्होंने दोबारा हमला किया रात में। और कहते हैं कि भूख ना, खुराक ना होने की वजह से जो बाहर हालांकि अंग्रेज के सिपाही और अंग्रेज की फौजें थी, उनके जो गार्ड थे वो बड़े कमजोर हो चुके थे। बहरहाल अच्छा, अब ये जो बादशाह और ये लोग थे, ये बाज़ औक़ात अपने नजूमियों के ऊपर बड़ा इर्द गिर्द रखा करते होते थे। कहते हैं इनके नजूमी ने इनको आगाह कर दिया था, यानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को इनके नजूमी ने इनको आगाह कर दिया था कि आज का दिन बुरा है। उन्होंने इनका जो भी चढ़ावा चढ़ाया, उन्होंने तेल में अपना अक्स भी देखा और उन्होंने उस नजूमी को एक ऊंट, एक हाथी दिया, तकरीबन बेशुमार पैसा दिया और तोहफे तहाइफ से नवाजा भी। उसके बाद टीपू सुल्तान ने गुसल किया, उनको कोई चोट नहीं आई थी अभी तक, हालांकि रात उन्होंने शदीद मुकाबला किया था एक दिन पहले अंग्रेज फौजियों का, मगर कहते हैं कि क्योंकि जब पुजारी ने कहा कि आज का दिन आप पे भारी है, तो उन्होंने गुसल के बाद टीपू सुल्तान ने गरीबों में पैसे वैसे बांटे। इन्होंने जो ये पुजारी था इसको एक हाथी, तिल की एक बोरी 200 रुपए दिए। दीगर ब्राह्मणों को टीपू सुल्तान ने काली बकरी, काले कपड़ों से बनी एक पोशाक और 90 रुपए के अलावा तेल से भरा एक बर्तन भी दिया। बहरहाल उसके बाद टीपू सुल्तान वापस लौटते हैं। ये पूरा दिन गुजर गया, इसमें दीवार की रिपेयर होती है, दीवार का जो हिस्सा टूटा था उसको रिपेयर किया गया। टीपू सुल्तान ने सारा दिन ये काम किया। उसके बाद टीपू सुल्तान अपने जहां पे उनकी रिहाइश थी वहां पे वापस आ जाते हैं। आने के बाद सारा दिन के थके हुए थे, रात का खाना जब बैठे तो उनका एक कमांडर था सईद गफ्फार, उसने इत्तला दी कि दोबारा हमला हो गया, उन्होंने सरंगापटम के फ्रंट का वो ही हिस्सा तोड़ा है जो रात तोड़ा था और अंग्रेज फौज दाखिल हो गई। टीपू सुल्तान ने अपनी फूड को वहीं पे पीछे छोड़ा। ये बड़ी दुखदही कहानी है और मैं आज भी अपनी तारीख में यही कुछ देख रही हूं। कहते हैं टीपू सुल्तान ने अपने खाने को परे किया, अपने घोड़े के ऊपर सवार हुए और जंग के लिए अपने महल के अंदर ही, क्योंकि फौजी अंग्रेज फौज उसमें आ गई थी। कहते हैं मगर जब तक वो उस जगह तक पहुंचते जहां पे दीवार में उसी जगह पे दोबारा सुराख किया था, अंग्रेजों ने वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया था, किले के दूसरे इलाकों की जानिब उन्होंने फैलना शुरू कर दिया था। टीपू सुल्तान बेदरेग लड़े। इस दौरान वो कहते हैं ज्यादातर लड़ाई उन्होंने आम तौर पर फौजियों की तरह की, क्योंकि इनका जो घोड़ा था उसको चोट आई थी और उनके घोड़ा जो था उसको शायद गोली लगी थी या जो भी हुआ था। मार्क विल्सन लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो जंग के मैदान से भाग भी सकते थे, मगर उन्होंने मैदान को छोड़ के एनआरओ ना लिया, ना भागे और उन्होंने आखिर तक जंग लड़ी। उस वक्त के ये अब मीर नदीम का जिक्र आ रहा है। ये मीर नदीम वही था जिन्होंने एक दिन पहले अपनी वेजिस का और अपने साथियों को साथ मिलाया था, अपने हवारियों को साथ मिलाया था। اب یہ میر ندیم اپنی فوج کو لے کے جو ان کے ہواری تھے وہ قلعے کی دیوار میں اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں اور بجائے ان کی طرف گولیاں برسانے کے اپنے لوگوں کے اوپر انہوں نے گولیاں بھی برسائیں. انہوں نے ٹیپو سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا کہ میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. اور یہ تاریخ کو مرتب کیا مارک ولکسن نے جو کہتے ہیں کہ ٹیپو چاہتے تو بھاگ سکتے تھے. اور یہ کتنے تکلیف دہ بات ہے کہ ایک شخص جو آپ کی فوج میں اور آپ کا اپنا ذات سے برادری سے آپ کا اپنا ہو. کہتے ہیں کہ ندیم بجائے اس کے کہ وہ حفاظت کرتے ٹیپو سلطان کی وہ اس تماشے کو دیکھ رہے تھے. ٹیپو سلطان کہتے ہیں بہت زخمی ہو چکے تھے اور اب ان کا گھوڑا زخمی ہو چکا تھا, گھوڑے کے بغیر تھے, پیدل تھے اور بالکل اسی طرح سے وہ مقابلہ کر رہے تھے جیسے ان کے باقی فوجی کر رہے تھے. جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے میں ایک گولی نکل گئی. اب گولی لگنے کے باوجود کہتے ہیں وہ خون ان کا بہت بہ چکا تھا, انتہائی لاغر صورت میں بھی وہ اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے. گھوڑا ان کی ڈیتھ ہو گئی بھی تھی. ان کے ساتھیوں نے نہ فوری طور پہ کیونکہ ان کو زخم آیا تھا ٹیپو سلطان کو ڈولی پر بٹھا کر جنگ سے باہر لے جانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے کیونکہ گولی کا زور تھا, انگریز فوجی تعداد میں بہت زیادہ تھے, بے شمار لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا. میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں لیکن ٹیپو سلطان کو یہ منظور نہیں تھا کہ انگریزوں کو بتائیں اور وہ زندہ انگریزوں کی تحویل میں جانا بھی نہیں چاہتے تھے. وہ موت کو اور شہادت کو پسند کر رہے تھے, موت کے لمحے کو. ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن لکھتے ہیں کہ تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی حالانکہ ٹیپو کا خون بہت بہہ چکا ہوا تھا مگر وہ تقریباً بے ہوشی کے عالم میں بھی یہ جس فوجی نے ان سے تلوار چھیننے کی کوشش تھی اس پہ تلوار کا وار کیا اور اس فوجی کو موت کے گھاٹ اتارا. پھر انہوں نے اسی تلوار کے ساتھ نکاہت کے باوجود ایک اور انگریز فوجی کے اوپر حملہ کیا. اب یہ انگریز نہیں تھے, آف کورس انگریز لیڈرز تھے, ان کے بہت سارے کمانڈرز بھی مارے گئے مگر یہ وہ نیٹو لوگ تھے جن کو بھرتی کیا گیا تھا اور ان کی اپنی فوج کے لوگ اس کو تماشا دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کو کچھ باؤنٹیز, کچھ تحفے تحائف, کچھ خطابات, کچھ زمینیں یا وہ دی گئی تھی. یہ فوجی جو تھے انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کیا وہ ان سے جواہرات اور والی جو جڑی تھی نا وہ چھیننا چاہتے, جواہرات سے جڑی ہوئی تلوار جو تھی نا وہ چھیننا چاہتے تھے لیکن وہ یہ کر نہیں پائے. انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو کی موت ہو چکی ہے. وہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے محل کے اندر گئے, پتا چلا کہ ٹیپو تو محل کے اندر موجود نہیں. They never thought کہ وہ آگے اگلی صفوں میں عام فوجیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں انگریزوں کو اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو سلطان کی لاش پڑی ہوئی تھی. بہت سارے اور فوجی بھی زخمی بھی پڑے ہوئے تھے, بہت کی شہادت ہو چکی ہوئی تھی. مشل کی روشنی میں ٹیپو کی ڈولی نظر آئی, اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے. پھر راجہ خان نے بتایا کہ ٹیپو سلطان لڑتے ہوئے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. ان کا جسم اتنا گرم تھا, کہتے ہیں جب ان کو وہاں سے ٹیپو سلطان کو پکڑا ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے کرنل ویلزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں, لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل کی دھڑکن دیکھی تو نبض ان کی چل نہیں رہی تھی, دل ان کا بند ہو چکا تھا, تو ہمارا شک دور ہوا کہ ٹیپو سلطان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک گولی ان کے دائیں کان سے لگی اور دائیں کان سے لگنے کے بعد ان کے جبڑے سے باہر کی طرف نکل گئی تھی جس کی جو ان کی موت کا باعث بنی تھی. اس دن ٹیپو سلطان نے بہترین, ہم نے آپ سے پہلے ہی شیئر کیا کہ اگلے دن صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے غسل کیا تھا, تیار ہوئے تھے, بے شمار غریبوں کو پیسہ بانٹا تھا, پنڈتوں کو بھی ملے تھے. ان کے پاس ان کے جسم پہ کوئی زیور نہیں تھا. جب ان کی بازو کٹائی تو یہاں پہ ان کی بازو کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا ملا جس کو ہم اکثر پاکستان میں جب لوگ ٹریول کرتے ہیں, امام زامن جس کو کہتے ہیں, امام زامن کہتے ہیں. یہ چاندی کا ایک تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا. جنرل بیرڈ نے ٹیپو کی لاش کو ان کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا, دربار کو پیغام بھیجا کہ ٹیپو اب اس دنیا میں نہیں رہے. ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی. हैदर अली की कब्र के बगल में इनको दफन किया गया। अगले दिन शाम को महल से टीपू सुल्तान का जनाजा निकला। इनके जनाजे को इनकी जाती मुलाजमीन ने उठाया। इनके साथ अंग्रेजों की चार कंपनियां भी चल रही थी। बरतानिया की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड में रखी दस्तावेज के मुताबिक जर्नल ऑफ द वॉर विद टीपू में लिखा है कि इनके जनाजे के ठीक पीछे शहजादा अब्दुल खलीक चल रहे थे। इनके पीछे दरबार के हम एहलकार थे। जिन सड़कों से जनाजा गुजरा उनके दोनों तरफ भीड़ थी। लोग जमीन पर लेटकर जनाजे को खराज अकीदत पेश कर रहे थे। लोग जोर जोर से रो रहे थे। उन्हें लाल बाग में इनके वालिद हैदर अली की कब्र की बगल में दफनाया गया। इसके बाद टीपू के जनाजे में शरीक अफराद को 5,000 रूपये बांटे गए। बैटसन ने लिखा है कि रात होते होते माहौल और ज्यादा गमजदा हो गया जब बादलों की गरज के साथ जबरदस्त आंधी चली और इस आंधी में दो अंग्रेज अहलकार हलाक भी हुए और मुतअद्दद जख्मी भी हुए। अब टीपू सुल्तान क्योंकि जब आखिर में लड़े थे तो उनकी जेवरात उनके जिस्म के ऊपर कोई नहीं थे, सिर्फ एक वो चांदी का तावीज उनके पास मिला। उनके पास उनके सर पे कैप भी नहीं थी, शायद लड़ते हुए वो जो टोपी उनकी थी वो कहीं पीछे गिर गई हुई थी। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज फौजियों ने श्रीरंगापट्टनम को बुरी तरह से लूटा, बुरी तरह से लूटा, उनके तमाम खजानों को लूटा। और आज आप क्या बात करते हैं, लूटने की बात है तो जितनी बुरी तरह से हिंदुस्तान लूटा था, हिंदुस्तान के जितने खजाने वहां से निकाले गए थे, आज उसका तखमीना लगाएं आप। कहते हैं कि फिर भी टीपू के मरने के बाद अंग्रेज फौजियों ने श्रीरंगापट्टनम को बुरी तरह लूटा। फिर भी टीपू का तख्त, हाथी पर बैठने की चांदी की सीट, सोने और चांदी से बनी प्लेटें, जवाहरात से जुड़े जड़े ताले और तलवारें, महंगे कालीन, रेशम के बेहतरीन कपड़े, जवाहरात से भरे 20 बक्से आम फौजियों के हाथ नहीं लगे। टीपू की लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत थी, उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तारीख, साइंस, अहादीस के बारे में अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी जबानों में 2,000 से ज्यादा नुस्खे इस लाइब्रेरी में थे। अंग्रेज फौज की जानिब से एक हीरे से बना दस्तार और टीपू की तलवार वेल्स को पेश की गई। मेजर अलेक्जेंडर एलन ने अपनी किताब इन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखा है कि हैरिस ने टीपू की एक और तलवार बेर्ड को तोहफे में दी और सुल्तान के तख्त में जड़े शेर को सरविंसर कासल के खजाने में भेज दिया गया। टीपू सुल्तान उनकी तलवार एक जो है लॉर्ड कार्नोस के पास यादगार के तौर पर भेज दी गई। तब तक अंग्रेज का सामना इंडिया में टीपू जैसे बादशाह से नहीं हुआ था। टीपू के बाद अंग्रेजों को जंग में चैलेंज करने वाला कोई न रहा। एक अंग्रेज सहाफी है पीट अबेर, उन्होंने अपनी किताब राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में लिखा है कि टीपू की शिकस्त के बाद मशरिक की पूरी सल्तनत हमारे कदमों में आ गिरी। इस पूरी की पूरी कहानी को पढ़ने का मकसद ये था कि अगर टीपू चाहते तो फरार भी हो सकते थे, मगर उन्होंने फरार होना नहीं चाहा। आखिर दम तक अपने घोड़े के मरने के बाद प्यादा फौज के साथ शामिल रहे, लड़े। किले की दीवार में जब सुराख होती है तो नदीम को बड़ा क्रेडिट जाता है और उनके साथ वो तमाम मुसलमान फौजी और उसके साथ इर्द गिर्द के जो उसके साथी थे जिन्होंने सफेद झंडा दिखा के अंग्रेज को, आज भी वही हो रहा है, मेरी फौज अजीम फौज है मगर मेरी फौज में चंद लोग हैं वो जो सफेद झंडी लेके खड़े हुए हैं इशारा देने के लिए कि कब तुमको हम पर फाइनल हमला करना है। सुनते रहिए प्रोग्राम इसी तरह। मैं आपके साथ आरिफ मुजफ्फर, eawaz.com हमारी वेबसाइट है।
आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, मैं किले में भी गया हूं उनके, और उसके साथ साथ वो जो टीपू सुल्तान का जो
ब्रिटिश म्यूजियम में ये मौजूद है और उनका मकबरा रह गया, मगर आपको मैं कहती हूं कि उनकी एक से ज्यादा जितनी तलवारें थी उन तलवारों को वहां से करके, और मैं आज भी आपको ये कहती हूं आज इंडिया बिल्कुल जो हीरा था कोहिनूर का हीरा वो उसकी भी डिमांड कर रहे हैं, वो बाकी चीजों की भी डिमांड कर रहे हैं, वो अपने वैल्यूएबल्स को ले जाएंगे।
मैं क्रेडिट देता हूं
अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को धोखा देने वाले मीर जाफर, मीर सादिक कौन लोग थे, ये तमाम के तमाम मुसलमान थे। मैं बिटर हूं, मैं बिल्कुल बिटर हूं। हम अपने ये वो मैंने जो बाइडन का आज के प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आज अमेरिका जो सफर कर रहा है वो कह रहे हैं कि जीनोफोबिया की वजह से, चाइना सफर कर रहा है, जापान सफर कर रहा है, इंडिया सफर कर रहा है, दे आर नॉट मैंशनिंग। और हमारा तो अलमिया सदा से है, सदा से हमारा अलमिया ये रहा कि हम जहां दुख की बात करते हैं वी गेट डिवाइडेड, आधे लोगों का मुंह इस तरफ हो जाता है और आधे लोगों का मुंह इस तरफ हो जाता है। ठंडे दिल से बैठिएगा, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। और ये गद्दार कोई और नहीं है, ये मेरे और आप में से ही है। सुनते रहे प्रोग्राम, इसी तरह से शुक्रिया।
मगर आरपजी क्रेडिट जहां जाता है वहां क्रेडिट देना जरूरी है कि ये नहीं हुआ कि ये क्योंकि एक मुसलमान का जगह है तो इसको खार के फेंक दो, फिनिश कर दो। उन्होंने इतनी अच्छी तरह मेंटेन किया, बहुत बड़ा उन्होंने।
मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि अगर आप जो मैनुअल ऑफ लाइफ कुरान और हदीस के बारे से बात करते हैं तो पहले जो 7 मुल्क हैं सारे के सारे यूरोपियन और वेस्टर्न मुल्क हैं। अमेरिका का नाम नहीं आता उसमें, कैनेडा इज वन ऑफ दोज, आयरलैंड है, आइलैंड है, मैक्टनबर्ग है, देर आर 7 कंट्रीज। और सबसे नीचे ह्यूमन राइट्स के बीच में अगर बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली नमाज एंड कुरान, वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स। गरीब को भूखा ना सोने देना, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक आदमी अगर आप सोने को जमा करने की बात करते हैं तो इस्लाम तो ये भी नहीं कहता कि सोने की ईंटें जमा करो। अगर आप सोने की ईंटें जमा करते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे इकना के वो कहते हैं आपने तो सोने को ब्लॉक कर दिया। तो दीज आर पीपल, आज भी ये लोग मौजूद हैं, मगर आज भी कानून इस्लाम के मुताबिक, आज आप देख लीजिएगा गजा के मुताबिक, अगर गजा के लिए अगर लोग लड़ रहे हैं आवाज, हम तो शो कराने के चक्कर में, कौन सा कितना बड़ा कॉन्सर्ट हमने कराना है, हु केयर्स कि कौन मर रहा है, कौन केयर कर रहा है। दीज आर वेस्टर्न पीपल, और बहुत से वेस्टर्न पीपल ने ये सवाल भी उठाया है कि क्या बात है कि मुसलमान वो जो गजा के लोग हैं उनको फरार रहे फरार भी नहीं दे रहे, और पाकिस्तान वाले तो वैसे ही सुपर हैं, झूम झूम के गाने गाने के लिए हम वहां पे मौजूद हैं। हमें अजीज है तो हमारा मुस्तकबिल अजीज है, मगर अगर कोई मेरी माँ का नहीं है तो वो मेरा भी कभी नहीं होगा। स्पॉन्सर्स विल कम बैक।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होल सेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट,
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300, 905-272-2300, airwings.ca।
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा।
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ।
बस इतनी छोटी सी बात, आप पायल ज्वेलर्स पे जाओ ना।
मगर मुझे चाहिए 22 कैरेट की कस्टम ब्राइडल ज्वेलरी, हीरे की अंगूठी, चूड़ियाँ, बालियाँ, कड़े, वो भी लेटेस्ट डिजाइन के और इम्पोर्टेड मटेरियल में।
हाँ हाँ, पायल ज्वेलर्स पे सब किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी।
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ।
पायल ज्वेलर्स की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है 11 मई को एट 11 AM, 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन, या कॉल करें 905-790-7879।
चांदनी
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 चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल,
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall, aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca.
सत सौ सत्तर AM दिया नशरियात सुनते हालात हाजरा तो बाखबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साड़ी वेबसाइट eawaz.com, लोकल नंबर 647-872-4900।
ਕਦੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਜਦਾ
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਮੈਟ੍ਰੈਸਿਸ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਟਨ 9058747171
शॉपर्स हो जाइए तैयार लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए
जी हाँ वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम
ध्यान रहे सेल तो सिर्फ अप्रैल 20 से मई 12 तक ही है फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे